समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
आकाशवाणी गोल्ड पर एक नई सुबह का आगाज हो चुका है और सुबह की शुरुआत करते हैं हम उन्हें याद करके जिनकी वजह से हम अपने घरों में महफूज हैं। जी हाँ, ये समय है भारतीय सशस्त्र सेनाओं की वीरता, साहस और पराक्रम को सलाम करने का। पिछले दिनों हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया, हम सभी हमारी सेनाओं के पराक्रम के आगे नतमस्तक हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे सैनिक पूरी मुस्तैदी के साथ हमारी सीमाओं पर डटे हुए हैं।
Absolutely. We are so thankful to the Indian Armed Forces and any win is incomplete, I would say, without our Prime Minister's vision and the bravery of Indian Armed Forces, be it Indian Army, Indian Navy or Indian Air Force. And this is one dangerous combination for any enemy. What do you say, Siddharth?
बिल्कुल, और ये जो सेनाओं का जो पराक्रम है उसके आगे पूरा देश नतमस्तक है और हम ये कह सकते हैं कि अगर वो सरहदों पर हमारी रक्षा कर रहे हैं तो देश के अंदर शहरों में हम सभी नागरिकों का ये दायित्व है कि हम उनके परिवारों की देखरेख करें, हम उनकी वेलबींग के लिए प्रार्थना करें और हमारी सेनाएं पूरी मुस्तैदी के साथ हमारे बॉर्डर्स पर, हमारी सरहदों पर डटी रहें।
True. And being Indians, I think every Indian shows loyalty and devotion when any enemy touches our motherland and hurts our people. And we unite, we take action, we win, and we take pride in it. Recently, Defense Minister Rajnath Singh very proudly praised the air warriors. If you have heard his statement, he said the Indian Air Force needed just 23 minutes to dismantle the terror infrastructure nurtured in Pakistan. And he said it wouldn't be wrong to say in the time it takes people to have breakfast, you finished off your enemies. This is so true and this is absolutely not wrong, rather perfectly said.
बिल्कुल, तो सेनाओं के इस पराक्रम की बात के साथ श्रोताओं हम शुरुआत करते हैं। न्यूज मैगजीन आज सवेरे की जो रोज सुबह ताजा तरीन खबरों के साथ देता है आपको वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के एडिशन के साथ मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट तन्वी खुराना। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार और तन्वी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
गुड मॉर्निंग टू यू Siddharth as well. A very warm welcome to all our listeners tuned into Akashvani FM Gold on 100.1 megahertz and of course the entire Akashvani network. This is going to be next great 30 minutes. So stay with us and enjoy whatever we have for all of you. Let's begin our program with the headlines.
जी हाँ, नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सात सरदली प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए जल्दी ही प्रमुख देशों का दौरा करेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल सोशल मीडिया पोस्ट में प्रतिनिधिमंडल में शामिल सांसदों की जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजन पांडा के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा। इस प्रतिनिधिमंडल में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और AIIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी शामिल हैं। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क का दौरा करेगा। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में तीसरा समूह इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर की यात्रा करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में तृणमूल कांग्रेस के यूसुफ पठान और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन पिटास शामिल हैं। शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चौथा समूह संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो और सियेरा लियोन का दौरा करेगा। प्रतिनिधिमंडल में भाजपा की बांसी स्वराज और बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा शामिल हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल अमरीका, पनामा, गयाना, ब्राजील और कोलंबिया का दौरा करेगा। वहीं दविण मुनीत कड़गम सांसद कनिमोई करुणानिधि के नेतृत्व में छठा प्रतिनिधिमंडल स्पेन, ग्रीस, स्लोवाकिया, लातविया और रूस जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सांसद सुप्रिया सोले के नेतृत्व वाला समूह मिस्र, कतर, इथोपिया और दक्षिण अफ्रीका जाएगा। इसमें भाजपा के राजीव प्रताप रूडी और अनुराग सिंह ठाकुर के साथ साथ कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी भी शामिल हैं।
Union Home Minister Amit Shah has hailed Operation Sindoor as a turning point in India's security doctrine. Addressing a public meeting at Gandhinagar in Gujarat, he said that Operation Sindoor marked a historic shift in India's national security response. Mr. Shah emphasized that under Prime Minister Narendra Modi's decisive leadership, Indian armed forces struck deep into Pakistani territory, dismantling terrorist infrastructure.
आजादी के बाद भारत की सेना ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादियों के कैंप्स को ध्वस्त करने का काम किया और जो डराते थे कि हमारे पास एटम बम है उनको लगता था उनकी धमकियों से डर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया।
The Home Minister, who is on a two-day visit to Gujarat, will also address a conference organized by the Gujarat State Cooperative Union at Science City in Ahmedabad this morning. Mr. Shah will inaugurate and lay the foundation stone for various people-centric projects of Ahmedabad Municipal Corporation worth over 1,500 crore rupees today. We have a report from our correspondent.
The conference titled Role of Cooperatives in Develop India is being organized as part of the celebrations of International Year of Cooperatives. It aims to provide an understanding of various steps taken by the Ministry of Cooperatives as well as to accelerate the cooperatives' activities in the state. Nearly 4,500 cooperative representatives from various cooperative institutions at village, taluka, district and state levels will take part in the conference. Later in the day, Mr. Shah will visit Gozaria village in Mehsana district to inaugurate the newly constructed nursing college and address a gathering at the same venue. In the afternoon, Mr. Shah will inaugurate the frozen potato processing plant in Sadra village of Mehsana. In the evening, he will inaugurate and lay the foundation stone for various infrastructure projects of Ahmedabad Municipal Corporation, including flyovers and housing. He will also distribute the kits to the beneficiaries of various KVIC schemes and address a public gathering in the program. Aparna Khunt, Akashwani News, Ahmedabad.
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज महाराष्ट्र में नागपुर में विदर्भ क्षेत्र के किसानों से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल होंगे। श्री चौहान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य कृषि विभाग और राज्य कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ क्षेत्र में कृषि और ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक करेंगे। श्री चौहान नागपुर में राष्ट्रीय मृदा स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी का उद्घाटन भी करेंगे।
Directorate General of Foreign Trade has announced new port restrictions on the import of certain goods from Bangladesh to India. In a notification, Union Ministry of Commerce and Industry clarified that these restrictions will not apply to goods from Bangladesh that are transiting through India and destined for Nepal and Bhutan. The directive issued through a notification has come into immediate effect. The import of all types of ready-made garments from Bangladesh will be prohibited through land ports. However, these goods will still be allowed through the seaports of Nhava Sheva and Kolkata. Additionally, the import of fruit, fruit flavored and carbonated drinks, processed food items, cotton and cotton yarn waste, plastic and PVC finished goods excluding pigments, dyes, plasticizers and granules used as inputs for domestic industries and wooden furniture will be restricted. Israel and Hamas have resumed negotiations to end the ongoing war in Gaza, following a new military offensive launched by Israel. Talks began yesterday in Doha, brokered by Qatari and US mediators. According to an official, Hamas has agreed to release 9 hostages in exchange for a 60-day truce and the release of Palestinian prisoners by Israel. Israel has yet to respond to the proposal, but prior to the talks, it stated that it would not withdraw troops from Gaza or commit to ending the war. Meanwhile, Israeli airstrikes on Gaza have intensified, with at least 300 casualties reported since Thursday.
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के बाद अब नजर डालते हैं स्पोर्ट्स न्यूज पर. सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में आज भारत अरुणाचल प्रदेश के गोल्डन जुबली स्टेडियम में बांग्लादेश के साथ खेलेगा. मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा. ग्रुप स्टेज में श्रीलंका को 8-0 से और नेपाल को 4-0 से हराने के बाद भारत का ये जो जीत का परचम है वो लहराता रहेगा. शुक्रवार को सेमीफाइनल में भारत ने मालदीव को 3-0 से हराया था. इस बीच बांग्लादेश ने गुरुवार की फाइनल में नेपाल पर 2-1 की कड़ी जीत के साथ फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी. भारत का सैफ टूर्नामेंट में एक शानदार इतिहास रहा है. अंडर 15, अंडर 16, अंडर 17 ये खिताब भारत ने 2-2 बार और अंडर 18, अंडर 19 और अंडर 20 खिताब 1-1 बार जीते हैं. तो हम सभी की निगाहें शाम को 7 बजे इस मैच पर लगी होंगी.
एब्सोल्युटली. एंड लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट. इन द आईपीएल क्रिकेट, डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता Knight Riders KKR were eliminated from IPL 2025 as their match against hosts Royal Challengers Bengaluru RCB was abandoned without a toss due to heavy rain at the M. Chinnaswamy Stadium last evening. The washout saw RCB move to the top of the points table with 17 points from 12 matches, ahead of Gujarat Titans 16 points from 11 and Punjab Kings 15 from 11, though both teams still have a game in hand. KKR with 12 points from 13 matches are now out of playoff contention, and their final league fixture against Sunrisers Hyderabad will be a mere formality. In today's fixtures, Rajasthan Royals will take on Punjab Kings at 3:30 p.m. at the Sawai Man Singh Stadium, Jaipur, while hosts Delhi Capitals will face Gujarat Titans at 7:30 p.m. IST at the Arun Jaitley Stadium, Delhi. So we have a lot to watch on screen today, be it at 3:30 match or 7:30 match or the one you mentioned
7 o'clock. जी हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं. आज छुट्टी के दिन संडे है, आज आप जब आप घर पर हैं और बहुत सारे काम करने को है. लेकिन इस बीच आतंकवाद के विरुद्ध सशस्त्र बलों की ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बीच पूरा देश के जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है. आकाशवाणी समाचार भी सशस्त्र बलों के सम्मान स्वरूप एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है.
As a tribute to the armed forces, Akashwani News is presenting a special series. Today, we remember the valor of Paramveer Chakra awardee, Grenadier Yogendra Singh Yadav, who displayed exemplary bravery during the Kargil War.
A resident of Bulandshahr district of Uttar Pradesh, Grenadier Yogendra Singh Yadav is the youngest person who has been awarded the highest wartime gallantry medal Paramveer Chakra for his role during the Kargil war against Pakistan. Yogendra Singh Yadav was part of the leading team of Ghatak platoon tasked to capture Tiger Hill on the night of 3rd and 4th July 1999. The approach to the top was steep, snowbound and rocky. Unmindful of the risk involved, he volunteered to be in the lead. Halfway up, an enemy bunker spotted him and opened up machine gun and rocket fire, killing the commander and two of his colleagues, and the platoon was stalled. Realizing the gravity of the situation, Grenadier Yogendra Singh Yadav crawled up to the enemy positions to silence it and in the process sustained multiple injuries. Unmindful of his injuries and in the hail of enemy bullets, he continued climbing towards the enemy positions. Lobbing grenades and continuously firing from his weapon, he killed 4 enemy soldiers in a close combat. Despite multiple injuries, Grenadier Yogendra Singh Yadav refused to be evacuated and continued the charge. Inspired by his gallant act, the platoon charged onto the other positions with renewed punch and captured Tiger Hill top. Grenadier Yogendra Singh Yadav displayed the most conspicuous courage, indomitable gallantry, grit and determination under extreme adverse circumstances. The nation salutes him. On the occasion of 75th Independence Day in 2021, Yogendra Singh Yadav was conferred the rank of Honorary Captain by the President of India. Anupam Mish, Akashvani News, Delhi.
और श्रोताओं, कार्यक्रम आज सवेरे में अब वक्त हो चला है मेट्रो न्यूज का, और सबसे पहले चेन्नई के समाचारों के साथ हैं तन्वी।
Let's begin with Chennai. The Indian Coast Guard thwarted a fuel smuggling attempt in the Gulf of Mannar on Saturday. In response to an input from the Customs Department about suspicious activities in the Gulf of Mannar, the Indian Coast Guard station Mandapam carried out a joint operation resulting in the seizure of about 600 litres of petrol way beyond permissible limits on board an Indian fishing boat along with three crew members of the Musil Thivu, Gulf of Mannar. Investigations by the Department of Customs are in progress, and this is yet another successful operation to thwart illegal trade through sea. Some more news from Chennai. Valluvar Kottam, a landmark in Chennai city, is all set to open by the end of this month with a new look. A sprawling 1600-seater AC auditorium is the centerpiece of an ambitious 80 crore renovation project. The plan to transform it into a cultural space with musical fountains and Thirukkural display began in January last year. Moving to Bangalore, Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar offered all possible support to the small and medium industries in the state. He was speaking at the Diamond Jubilee celebration of Karnataka State Small Industries Association in Bangalore yesterday. Karnataka Minister said if the poor are given fish, their one day hunger is satiated. But if the poor are taught fishing, then that can feed the family for the entire life.
और अब रुख करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों का। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया है कि राजधानी का बहुप्रतीक्षित मास्टर प्लान 2041 जल्द ही लागू किया जाएगा। श्री वर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों के भविष्य को नया आकार देने की दिशा में इस प्लान को एक बड़ा कदम बनाया। सुनते हैं हमारे संवाददाता अक्षित वैद्यान की ये रिपोर्ट।
इस मास्टर प्लान के लागू होने पर दिल्ली के लगभग 48 गांवों का शहरीकरण किया जाएगा। यह केवल एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन है, जिससे गांवों को आधुनिक शहरी सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। शहरीकरण के बाद इन गांवों में सड़कों का जाल, बेहतर सीवरेज, पानी की आपूर्ति, स्ट्रीट लाइटिंग, स्कूल, अस्पताल और अन्य मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। श्री वर्मा ने कहा कि राजधानी में अब ग्रामीण चौपालों, सामुदायिक केंद्रों, गलियों का विकास शुरू हो गया है।
आज सारे देहात में पहले की तरह चौपाल, कम्युनिटी सेंटर, गली, सड़क, ये सारी चीजों का विकास होना शुरू हुआ है। हमारी प्राथमिकता है कि जैसे नई दिल्ली में विकास होता है, वैसे दिल्ली देहात में भी उसी तर्ज पर विकास हो। पैसे की कोई कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। जैसे हमारे विधायक, हमारे निगम पार्षद सारे अपनी डिमांड बताते रहेंगे, वैसे वैसे काम होते रहेंगे।
लोक निर्माण विभाग मंत्री ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्लान से जुड़े सभी कार्य समयबद्ध और जनहित को ध्यान में रखकर पूरे किए जाएं।
बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के 15 पार्षदों ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देकर इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी नाम की नई पार्टी बना ली है। हिमानी जैन और मुकेश गोयल के नेतृत्व में पार्षदों ने अपने त्यागपत्र के लिए आंतरिक कलह को जिम्मेदार ठहराया है। और अब रुख करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के समाचारों का। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने घोषणा की है कि युवाओं को रोजगार के माध्यम से सशक्त बनाने और उद्योगों को कुशल जनशक्ति प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे, और ये जो स्किल्स सेंटर हैं वो युवाओं के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं। वे कल पुणे के बानेर में कौशल विकास केंद्र के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे। और अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं देश की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता के समाचारों का। पश्चिम बंगाल में मॉनसून के सामान्य समय से पहले पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग IMD अलीपुर कोलकाता मौसम कार्यालय ने कहा है कि उत्तर बंगाल के जिलों में हर साल की तरह इस बार भी मॉनसून की पहली बारिश होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पहले ही दक्षिण और दक्षिण पूर्व अंडमान सागर में पहुंच चुका है। इस बीच ऊपरी हवा में चक्रवात के कारण हिमालय से सटे जिलों में बारिश हो रही है, जो कि प्री मानसून बारिश है। जी हां, तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सवेरी आकाशवाणी गोल्ड पर सिद्धार्थ और तन्वी के साथ, और इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 7:49 और पूरे 55 सेकंड हो गए हैं। आप जानते हैं आज मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है, और सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। राष्ट्रीय राजधानी में तन्वी इस समय बारिश हो ही रही है दिल्ली में, बहुत थोड़ा सा मौसम जो है वो, जो इतनी ज्यादा धूप और तपिश थी उससे हमें थोड़ा निजात मिलती दिख रही है। और आज भी अच्छी बात यह है कि दिल्ली में बारिश की संभावना है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 42 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो वहां भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और यहां भी बारिश की संभावना है। आज का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता की बात करें तो वहां तेज हवाओं के साथ वहां भी बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तन्वी, अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का क्या हाल है?
Chennai is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 29 degrees Celsius and maximum will be around 35 degrees. Bangalore is expected to have partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and maximum will be around 30 degrees. Hyderabad is also expected to have generally cloudy sky but with the possibility of rain or thunder showers or even dust storm. The temperature will hover somewhere between a minimum of 24 degrees and a maximum of 35 degrees Celsius. So every city has some expectancy of light rain and who doesn't love rain, right Siddharth?
जी बिल्कुल, तो एक अच्छा मौसम है, छुट्टी के दिन अगर मौसम अच्छा हो तो घूमने फिरने का जो आनंद है वो दोगुना हो जाता है। और इसके बाद बढ़ते हैं हमारे अगले चंग की ओर। अब समय है इतिहास के पन्नों में दर्ज उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गई। और सबसे पहले आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है,
International Museum Day. Yes, it is being observed today. It underscores the importance of museums in preserving cultural heritage, promoting education and fostering dialogue between communities and generations. ASI, that is Archaeological Survey of India, has announced that entry to all ASI monuments and museums across the country will be free today on the occasion of International Museum Day.
बिल्कुल, तो अभी आज संडे का दिन है और अभी तक आपने कहीं घूमने का प्रोग्राम नहीं बनाया है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली में एटलीस्ट आप नेशनल म्यूजियम जा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां आप जा सकते हैं। और आज ASI आज अपने 52 संग्रहालयों टिकट में प्रवेश वाले स्मारकों को बिना किसी शुल्क के लिए जनता के लिए खोल रहा है और लोगों को म्यूजियम के प्रति प्रोत्साहन दे रहा है।
आई थिंक किड्स शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड डेफिनेटली गो टू वेरियस म्यूजियम्स दैट आर इन मल्टीपल सिटीज अक्रॉस द कंट्री।
बिल्कुल, तो ये हमने एक मेन जो बात थी वो अपने सुनने वालों को बताई। और अब थोड़ी सी घटनाओं की भी बात कर लेते हैं। 1848 में आज ही के दिन पहली जर्मनी में पहली नेशनल असेंबली का उद्घाटन हुआ था। और इसके अलावा 18 मई 1974 का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है जब राजस्थान के पोखरण में अपने पहले भूमिगत परमाणु बम परीक्षण के साथ भारत एक एटॉमिक जो शक्ति होता है वो बन गया था। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। इस बम का निर्माण राजा रमन्ना की अध्यक्षता वाले भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क के वैज्ञानिकों ने किया था।
लेट मी जस्ट एड समथिंग टू द सेम पॉइंट। दिस परफेक्ट इवेंट मेड इंडिया द 6th नेशन टू एक्सप्लोड एन एटॉमिक बॉम्ब। एंड इफ वी टॉक अबाउट अनदर ईयर दैट इज 1955, हिंदू मैरिज एक्ट वॉज अमेंडेड।
और 1912 में आज ही के दिन सुप्रसिद्ध और ऐतिहासिक फीचर फिल्म श्री पुंडलिक इसी दिन रिलीज हुई थी। तो ये थे हमारे इवेंट्स, और अब याद करते हैं उन महान हस्तियों को जो आज के दिन हमसे मिले या जुदा हुए। 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं, और योग ने हमारे देश में एक बड़ी क्रांति लाई है। और इसी कड़ी में आज हम याद कर रहे हैं कृष्ण पट्टाभि जोइस को, जो प्रसिद्ध भारतीय योगाचार्य थे और उनकी आज पुण्यतिथि है।
And we are also remembering today Ian Curtis. Today is his death anniversary. He was an English singer, songwriter and musician. He was the lead singer, lyricist and occasional guitarist of the band Joy Division, with whom he released the albums Unknown Pleasures in 1979 and also Closer in 1980. He was noted for his on-stage behavior and dancing style, influenced by his experiences with epilepsy as well as his his dark baritone voice. So we have a track by his band titled Atmosphere. Let's enjoy. And we are also remembering today Elizabeth Montgomery. Today is her death anniversary, an American actress whose career spanned 5 decades in film, stage and television. She portrayed the good witch, that is Samantha Stephens, on the popular TV series Bewitched, which earned her 5 Primetime Emmy Award nominations and 4 Golden Globe Award nominations. Well, throughout her career, she was involved in various forms of political activism and also charitable work. If we go back the memory lane and hear the amazing soundtrack of this TV series Bewitched, you will be very happy this morning. So let's hear that.
और श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेत्री रीमा लागू को, जो हिंदी फिल्मों की शानदार अभिनेत्री थीं। उन्हें फिल्मों में माँ की जो भूमिका है उसे याद उसके लिए याद किया जाता है। और तन्वी, तुमने देखा होगा बहुत सारी फिल्म्स में जब माँ का नाम आता है तो रीमा लागू का जो फेस है वो बतौर माँ के लोग याद करते हैं। मैंने प्यार किया की बात करें तो वहां पे वास्तव, ये दिल्ली और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, आशिकी, साजन, हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, वास्तव, कुछ कुछ होता है, हम साथ साथ हैं, जैसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें रीमा लागू ने माँ के किरदार को जीवंत किया था। उन्होंने सलमान खान के लिए भी कई फिल्मों में उनकी माँ की भूमिका निभाई और इस तरह से आज हम रीमा लागू को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है।
True. Rima Lagu was a very versatile actor and I remember her, the face that she portrayed in Vastav, that was one of a kind.
जी बिल्कुल। और श्रोताओं, धीरे धीरे हम कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जाने से पहले, आपसे विदा लेने के पहले, हम आपसे यही कहेंगे कि हम अपने देश के सैनिकों के शौर्य, पराक्रम और जज्बे को सलाम करेंगे। हम सेनाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता जो व्यक्त करना है उसे करेंगे और पूरा देश वही कर रहा है।
ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा।
श्रोताओं, इस समय हमारा दुश्मन मुल्क मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। सोशल मीडिया पर इस तरह की बहुत सारी भ्रामक और अफवाह फैलाने वाली पोस्ट से बचें। किसी भी जानकारी के लिए आप भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट और आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन, हमारे करंट अफेयर्स कार्यक्रम, इसको लगातार सुनते रहें और लोगों को सही और सटीक जानकारी दें। और आपके बेहतर दिन की शुभकामनाओं के साथ अनुमति दीजिए सिद्धार्थ सिंह और तन्वी खुराना को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।
Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhata Hindi News Bulletin followed by Morning News in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a superb day.
Namaskar.